नमस्कार, प्रिंट पॉड में मैं शिव पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज के नेशनल इंटरेस्ट में शेखर गुप्ता कहते हैं कि जॉबलेस ग्रोथ तो आपने सुनी होगी, लेकिन टाटा, बिरला, अंबानी और अडानी ने भारत को ब्रांडलेस ग्रोथ दिया है। अडानी विवाद भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के कुछ संबंधित पहलुओं की ओर भी हमारा ध्यान खींच रहा है। इनमें सबसे पहला है विपक्ष का सरकार पर यह आरोप कि वो क्रोनिज्म को चला रही है, यानी अपने दोस्तों को बेजा फायदा पहुंचा रही है। इसे अगर विस्तार से देखें तो इसके दायरे में कॉरपोरेट इंडिया के 4-5 टॉप लीडर भी आ जाएंगे। आप इस सूची में अंबानी, टाटा, बिरला और वेदांता को भी शामिल कर सकते हैं। इन सबको विशाल कंपनी समूह कहा जाता है। इन सबके हित अलग अलग व्यापक क्षेत्रों से जुड़े हैं और बेशक इस सूची को अंतिम नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए टाटा को नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक से जुड़ा समूह कहा जाता है। वो ऑटोमोबाइल और सैन्य विमान भी बनाता है और अब एयरलाइन का विशाल कारोबार भी चला रहा है और वो इस्पात भी बनाता है। मुकेश अंबानी का रिलायंस ग्रुप मुख्य रूप से तेल शोधन से लेकर टेलीकॉम का व्यवसाय करने के साथ साथ खुदरा बिक्री और बायोसाइंस के क्षेत्र में अनुसंधान से लेकर मीडिया तक में पैर फैलाए हैं। आदित्य बिरला ग्रुप के स्टेक होल्डर्स टेलीकॉम, सीमेंट, धागों और खासकर एल्युमिनियम आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वेदांता मुख्यतः धातुओं के क्षेत्र में एक्टिव है, लेकिन अब उसने तेल और गैस जैसे एनर्जी के उत्पादन के क्षेत्र में भी कदम रख दिया है। लेकिन इन सब में तीन बातें समान हैं। पहली ये कि ये सब विरासत वाले या परिवारों के नियंत्रण वाले उपक्रम हैं। रिलायंस और बिरला पिछली पीढ़ियों द्वारा निर्मित साम्राज्य हैं। वेदांता और अडानी पहली पीढ़ी के संस्थापकों वाले और सीधे उनके नियंत्रण में चलने वाले उपक्रम हैं। उनके प्रमुख व्यवसायों पर परिवार के कितने सदस्यों का नियंत्रण है, ये संख्या अलग अलग है, जिसमें एक सिरे पर अडानी हैं तो दूसरे पर टाटा हैं। दूसरी बात यह है कि इन सबके अधिकांश व्यवसाय उन क्षेत्रों में हैं जिन पर सरकार का साया बड़ा और निर्णायक है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो नियमन की कड़ी व्यवस्था के अधीन हैं और अक्सर पारिभाषिक रूप से एकाधिकार वाले क्षेत्र हैं। चाहे मुंबई हवाई अड्डा हो या बिजली वितरण का व्यवसाय, या मुंद्रा बंदरगाह या बिजली खरीद समझौते के साथ विशाल बिजली उत्पादन के संयंत्र हों। के बाद तेल शोधन और टेलीकॉम, खनन, तेल के कुओं के मामले में रियायत पर भी लागू होती है। इन सब के मामले में सरकार से सीधा और विस्तृत संवाद निर्णायक होता है। तीसरी और इस सप्ताह के विमर्श के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से कोई भी वास्तव में ग्लोबल इंडियन ब्रांड का मालिक नहीं है। मैं जानता हूं कि टाटा इस बात पर आपत्ति कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ताज होटल हैं और अब एयर इंडिया भी वापस उनके कब्जे में है। लेकिन मैं विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि ताज अभी भी ऐसा होटल ब्रांड नहीं है जो दुनिया को चकित कर दे। इसकी वजह शायद ये है कि वे सुपर लग्जरी महलों से लेकर नौकरी पेशा वाले स्तर तक के कई वर्गों में फैले हैं। और जहां तक एयर इंडिया की बात है, वो दशकों पहले सरकारी जहर के दंश से बेजान हो चुकी थी और अब उसे उसकी पुरानी शान लौटाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अडानी की जो आलोचना हो रही है, उसकी बड़ी वजह मोदी सरकार से उनकी नज़दीकियां हैं, खासकर इसलिए कि उनके प्रमुख व्यवसायों के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करना बेहद अहम है। अगर भारत के समुद्र तट पर बंदरगाह चलाना ऐसा व्यवसाय है जो पूरी तरह सरकार द्वारा नियंत्रित है, तो आप विदेश में बंदरगाह की परिसंपत्तियां तब तक नहीं खरीद सकते जब तक सरकार आपकी समर्थक न हो। अब सवाल यह नहीं है कि यह सही है या गलत। बहस जब दो खेमों में बटी हो तब इसे प्रायः क्रोनिज्म बताया जा सकता है। उदाहरण के लिए कांग्रेस कहती है कि मोदी सरकार ऐसी विदेश नीति चला रही है जिससे उसके अपने दोस्त अडानी को फायदा पहुंचे। दूसरा पक्ष कह सकता है कि जब चीन अपनी बेल्ट एंड रोड पहल और अकूत खजाने के साथ आक्रामक रूप से पैर फैला रहा है, तब विदेश में प्रतियोगिता में टिके रहने के लिए जरूरी है कि जो भी सरकार हो भारत के ताकतवर व्यावसायिक समूहों के साथ मिलकर काम करे। इसी तरह हवाई अड्डों, हाईवे, रेलवे, सुरंगों, मेट्रो के साथ वे तमाम चीज़ें शामिल हैं जिनका भारत अब द इकोनॉमिस्ट के ताज़ा अंक के मुताबिक निर्माण कर रहा है। इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए आपको बड़ी थैली और बड़ी बैलेंस शीट वाली कंपनियों की ज़रूरत पड़ेगी ही। क्या इसके लिए आप दुनिया की बेक्टेल जैसी कंपनियों का इंतज़ार करते बैठे रहेंगे या भारत के विशाल कंपनी समूहों से यह करवाएंगे? कोई भी कंपनी सरकार के साथ मिलकर काम किए बिना ये सब नहीं कर सकती, इसलिए मुद्दा यह भी नहीं है। बहस इस पर होनी चाहिए कि बेक्टेलों समेत सबके लिए समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं। ये गवर्नमेंट कॉरपोरेट सहयोग मोदी सरकार के आने से ही नहीं शुरू हुआ है। अडानी ग्रुप को कई बड़े लाइसेंस, ठेके और पर्यावरण संबंधी मंजूरियां यूपीए सरकार के ज़माने में ही दी गई थी। वे कह सकते हैं कि ये सब उन्होंने बड़ी निष्पक्षता के साथ ज़रूरी पूछताछ करके और प्रतिस्पर्धियों के को समान अवसर देकर किया था। लेकिन तथ्य ये है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ी मांग होती है, ऐसे कई क्षेत्र होते हैं जिनमें निजी पूंजी और सरकार को साथ मिलकर काम करना ही पड़ता है। हमने अडानी के मामले की विस्तार से चर्चा की है क्योंकि आज यह तमाम बहसों का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन ये सारे कंपनी समूह अपना अधिकांश व्यवसाय भारत में और ऐसे क्षेत्रों में कर रहे हैं जिनमें वे सरकारी छाया से बच नहीं सकते। उनकी अधिकांश कमाई घरेलू ही है, बेशक कुछ अपवाद भी हैं जैसे टाटा के सॉफ्टवेयर का व्यवसाय। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए भारत के कमजोर पूर्वी समुद्र तट ढामरा बंदरगाह का उदाहरण ले सकते हैं। टाटा ने इसे भारी अड़चनों के बीच बनाया, खासकर पर्यावरणविदों के विरोध के बावजूद, जिनकी आवाज़ यूपीए में ज़्यादा सुनी जाती थी। कई सवाल उठाए गए, मसलन यह कि उसे आरक्षित वन क्षेत्र काट कर तो नहीं बनाया जा रहा, जिससे ऑलिव रिडले कछुओं के प्रजनन क्षेत्र के नष्ट होने की संभावना हो। कई मुकदमे भी दायर हुए, लेकिन इसे कानूनी मंजूरी यूपीए के काल में ही दी गई। बेशक इसमें देर हुई, क्योंकि पर्यावरणविद के प्रति प्रेम के बावजूद सरकार के आला नेता इतने समझदार थे कि उन्होंने पूरब में एक और कारगर बंदरगाह की ज़रूरत को समझा। यूपीए ने इस पर रोक नहीं लगाई। ये और कहानी है कि टाटा ने बाद में इसे अडानी को बेच दिया। कई लोग इस बात पर विश्वास करते होंगे कि टाटा को इसे अडानी के हाथों बेचने के लिए ज़रूर मजबूर किया गया होगा, लेकिन मोटे तथ्य इस धारणा का खंडन करते हैं। ये सौदेबाजी यूपीए 2 के काल में चली और इसकी घोषणा 16 मई 2014 को की गई, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू ही हुए थे। तीसरी बात यह है कि ग्लोबल ब्रांड बना पाने में इन सुपर शक्तिशाली भारतीय कॉरपोरेटों की नाकामी वास्तव में निराशाजनक है। ब्रांड्स को हम मोटे तौर पर 3 वर्गों में बांट सकते हैं, देश, कंपनी और उत्पाद के ब्रांड्स में। पहले वर्ग में भारत के कुछ ब्रांड्स हैं, मसलन योगा, आयुर्वेद, अध्यात्म इत्यादि। इंजीनियरिंग और गणित में प्रतिभा आईआईटी, आईआईएम, जेनरिक मेडिसिन, इस सूची में आप और भी जोड़ सकते हैं। दूसरे देशों, खासकर कारोबार जगत में कई भारतीय कंपनियां ताकतवर ब्रांड्स के रूप में विख्यात हैं, जैसे टाटा, रिलायंस और वेदांता। इसके अलावा कुछ अन्य कंपनियां जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL और कुछ टेक कंपनियां इत्यादि भी इसमें शामिल हैं। लेकिन किसी ने ऐसा प्रोडक्ट ब्रांड नहीं दिया है जो दुनिया पर छा गया हो। भारत के पास पूरी तरह देश में बनी कार, दोपहिया, कोई सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई परफ्यूम या पेय तक नहीं है। हम तमाम तरह के उत्पादों, खासकर कृषि उत्पादों और हस्तशिल्पों के लिए GI टैग इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो पूरी दुनिया की दुकानों में नजर आता हो। कॉरपोरेट इंडिया कोई गारमेंट ब्रांड नहीं दे पाया है, और हमारे कारखाने जो बना और निर्यात कर रहे हैं वे अंतर्राष्ट्रीय स्टोर चेन्स के लेबल के नाम से बिक रहे हैं। इस तरह हमारे गारमेंट निर्माता बाहर के काम भी कर रहे हैं। PLI और दूसरी रियायतें देकर, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर मोदी सरकार दरअसल इसी काम का वादा कर रही है। बेशक ये बड़ी बात है कि भारत अब निर्यात के लिए खूब मोबाइल फोन बना रहा है, लेकिन कोई भारतीय नाम वाला ब्रांड नहीं है। दूसरी ओर चीन और कोरिया वालों ने आधा दर्जन ब्रांड फैला दिए हैं जो दुनिया के बाजारों में छाए हैं। मोदी सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है, यह अच्छी और ज़रूरी बात है, लेकिन वह भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को हमारी सॉफ्टवेयर उद्योग वाली दिशा में ही ले जा रही है, आउटसोर्सिंग की ओर। क्रोनिज्म निंदनीय है और ये अच्छी बात है कि इस पर जोरदार बहस जारी है, लेकिन इन अविश्वसनीय रूप से ताकतवर, अमीर, सफल कंपनियों के साथ साथ सरकारी नीति की सबसे बड़ी विफलता भारत की ब्रांडलेस इकोनॉमिक ग्रोथ है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नेशनल इंटरेस्ट के एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।